प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग 3, लेक्चर नंबर 159। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ॐ शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सुरसुरनरपतिवन्दने प्रविनष्टघातिकर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेषतीर्थङ्करने सौ सिद्धशुद्धास्तित्वने मुनिज्ञानदृगचारित्रतपवीया चरणसंयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वन्दुवळि मनुजक्षेत्रे वर्ततारहन्तने अरहन्तने सौसिद्धने य नमस्करण करियेरिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने सुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनि ये नाति शिव प्राप्ति मने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्वरुक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें से ये तीसरी पुस्तक है और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 113 पर। 60 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी, 60 नंबर की, और उसके अमृतचंद्राचार्य की टीका भावार्थ भी पढ़ा था। अभी हम यहाँ जयसेन आचार्य की टीका पढ़ते थे और वो एक प्रकार से अर्थ देखा भी था। हाँ, अभी नीचे से छठवीं लाइन है। तो जो परिणाम जो बताए ना, तो परिणाम के बारे में अन्य जो अन्य टाइप से अन्य अथवा अन्य प्रकार से जो व्याख्यान किया उसको यहाँ बताने वाले हैं। देखो वहाँ से पढ़ते हैं, अथवा परिणाम विषय द्वितीय व्याख्यानम क्रियते। एक बार ऊपर जता पहली बात क्या बताई थी, देखो ऊपर से चौथी लाइन में, पांचवी में आते तस्य केवल ज्ञान से संबंधी परिणाम स्वयं सुख रूप है, यानी केवल ज्ञान जो पर्याय है वही सुख रूप है। और उसका उन्होंने विस्तार बताया था कि खेद क्यों नहीं है कि पहले आवरण था तो युगपत जानने में असमर्थ था, उसमें क्रम करण व्यवहार व्यवधान वगैरह पड़ता था, इसलिए खेद होता था। अब जब आवरण द्वय का अभाव हुआ है तो केवल ज्ञान में ऐसा खेद नहीं होता और ये सबको एक साथ जानने के समर्थ है। और ये जो केवल ज्ञान है वही परिणाम है, अन्य कोई परिणाम नहीं है, ये एक व्याख्यान बताया था। अब दूसरा व्याख्यान बताते हैं, वैसा नीचे से पांचवी लाइन जो है, युगपत नहीं क्रियते के आगे युगपत अनंत पदार्थ परिचिति परिणामे अपि, यानी युगपत है ना एट ए टाइम, एक साथ एक ही समय में अनंत पदार्थों का ज्ञान परिचिति परिणामे अपि, अनंत पदार्थों के जानने रूप परिणाम होने पर भी वीर्यांतराय निरविशेष क्षयात्, वीर्यांतराय का संपूर्ण क्षय, निरवशेष, निर अवशेष, कुछ भी अवशेष रखे बिना पूरा क्षय होने के कारण अनंत वीर्यत्वात् खेद कारणम नास्ति। अनंत वीर्य होने से खेद का कोई कारण नहीं रहा। वीर्य बल कम हो तो खेद हो सकता है, यह तो अनंत वीर्य है। तथैव च उसी प्रकार शुद्धात्म सर्व प्रदेशेषु समरसी भावेन परिणममानानां सहज शुद्ध आनंद एक लक्षण सुख रसास्वाद परिणति रूप रूपम आत्मनः सकाशात अभिन्नम अभिन्न अभिन्नाम अनाकुलताम प्रति, अभिन्न ऐसी जो अनाकुलता है उसके प्रति खेदो नास्ति। फिर से पूरा अर्थ देखते हैं। एक तो वीर्यांतराय का पूर्ण क्षय हुआ है, दूसरा कारण क्या है? शुद्धात्मा के सर्व प्रदेशों में समरसी भाव से परिणमित होने वाले के सहज शुद्ध आनंद एक लक्षण जो सुख रस आस्वाद परिणति रूप ऐसे आत्मा से अभिन्न, ऐसा क्या है? अनाकुलता, उसमें खेद नहीं होता। यानी उससे से के लिए सकाशात आता है, आत्मनः सकाशात अभिन्नम, यानी आत्मा से अभिन्न। संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेपि निश्चयेन अभेद रूपेण परिणममानम केवल ज्ञानम एव सुखम बन्यते। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान ही सुख है। एक तो ज्ञान है और एक तो सुख है, दोनों में नाम जुदा जुदा है। संज्ञा लक्षण, एक का लक्षण है जानना, जानना स्वपर प्रकाशक एक का लक्षण है, और सुख का तो आह्लाद रूप अनुभूति है। प्रयोजन दोनों का अलग अलग है, एक का जानना प्रयोजन है और एक का आनंद रूप अनुभूति प्रयोजन है। ऐसा भेद होने पर भी निश्चयेन अभेद रूपेण परिणम मानम, निश्चय से अभेद रूप से वो परिणत होने के कारण केवल ज्ञान ही सुख कहते हैं, वही सुख है। ततः स्थितम, इससे ये बात सिद्ध हुई। ततः स्थितम एतत्, यानी इससे ये बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? केवल ज्ञानात् भिन्नम सुखम नास्ति, केवल ज्ञान से भिन्न सुख नहीं है। ततएव केवल ज्ञाने खेदो न संभवती थी, यानी केवल ज्ञान ही सुख है और सुख है वो निराकुलता है, अनाकुलता है, इसलिए केवल ज्ञान में खेद नहीं है। जैसे गणित में स्टेप बाय स्टेप एक एक बात सिद्ध करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने सिद्ध करके बताया। अब हम गुरुदेव के प्रवचन पढ़ते उसी पृष्ठ पर नीचे देखो, ये गुजराती लिखा है ना गाथा, उसके नीचे टीका। अब ये टीका जो अमृत चंद्राचार्य की है उस पर गुरुदेव प्रवचन करेंगे। ताराबेन आपके पुस्तक में कुछ आगे पीछे है? प्रवचन देखना है अभी। यहाँ हाँ देखो, यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या, परिणाम क्या, तथा केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक क्या, यानी भेद क्या, वो हमने गुजराती में देखा ना, शो शो ऐसा आया था पहले, भेद शो खेद शो, याद है? पहले हमने गुजराती में देखा, ये हिंदी में पढ़ रहे अभी, वो गुरुदेव अभी हिंदी में बोल रहे हैं। वो आपकी गुजराती है कि वह हिंदी है? गुजराती है तो नहीं, वो हमने ओरिजिनल टीका है, वो प्रवचन वाली नहीं है, प्रवचन हिंदी में है। वैसे ही टीका लिखा होगा कहीं पर उनको तो मिलता नहीं है, और ऐसी पुस्तक आपके हाथ में आ गई। कहाँ पर है? हाँ एक सौ है वहां पर, वो पढ़ो, वो ले लो। हाँ आपके साथ ले लो, क्योंकि वो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ हाँ बाद में उनको दे देना। देखो क्या कहते हैं, यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या, परिणाम क्या, तथा केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक यानी भेद क्या, कि जिससे, यानी अगर ऐसा खेद होता अने परिणाम होता तो कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो, यह बताते हैं। क्या कहा? यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या, परिणमना ये खेद है, परिणाम क्या है, परिणाम क्या खेद है। तीसरी बात, केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक यानी भेद क्या, इन्हें केवल ज्ञान होने से वहाँ आनंद भिन्न होता है कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो, इन्हें क्या वो ज्ञान जुदा है और क्या सुख जुदा है, ये कह रहे हैं। अभी इसको ही समझाएंगे। खेद के आयतन यानी स्थान घाती कर्म है, घाती कर्म कहा है, लेकिन वास्तव में तो भावघाती। मैंने कल ही बात बताई थी, गुरुदेव बहुत बार वो भावघाती की बात निकालते, जीव के परिणाम की बात है। वो जड़ कर्म क्या करेगा, वो जीव का अपना परिणाम है, उसका उसको फल है, उसका जो दुख होगा। तो कहते भावघाती है वह खेद का स्थान है। ये जो जब घाती कर्म कहते तो जड़ कर्म हुआ, और यहाँ भावघाती किसके, वो जो घाती कर्म के उदय में जीव के जो परिणाम हो रहा है, भले वो हीन ज्ञान रूप होगा या विपरीत रूप, जो मोहिनी में विपरीत रूप परिणाम हो रहा है, तो ये भावघाती कहने में आते हैं। चारों में लगाना है। तो भावघाती है वह खेद का स्थान है। देखो भावघाती में क्या हो रहा है, दो आवरण है, उसमें तो ज्ञान का वो सूक्ष्म चल रहा है, खुला नहीं है, कुछ जान नहीं सकता। उसमें पांच पॉइंट बताए पराधीनता के, इसलिए वो तो खेद है। दूसरी बात क्या है, वीर्यांतर है, अल्प वीर्य है, उसके कारण खेद है। और मोहनी है, वो तो है ही खेद, उसके उदय में जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं वो स्वयं खेद रूप है। तो चारों ही घाती में उसको खेद का कारण ये कह रहे हैं। ये भाव घाती में लगाना है। घाती कर्म के उदय में जीव के जो ये परिणाम हो रहे हैं उसी को भावघाती कहा, और वो दुखरूप परिणाम है। उस घाती कर्म का तो भगवान को नाश हो गया, भावघाती। हाँ, अपनी ज्ञान की परिणति हीन कम करते हैं तो उसमें खेद है। अब हमारी कैसी ज्ञान की परिणति चल रही है, बहुत अल्प है, हीन है, तो उसमें खेद हो रहा है। समझ में आया? तो उस हीन दशा का तो नाश हो गया, यानी वो कर्म का नाश हो गया, ज्ञानावरण का नाश होगा, ऐसा तो कहेंगे हम, परंतु मूल में क्या नाश हुआ? भगवान में व्यय किसका हुआ और उत्पाद किसका हुआ? उत्पाद तो केवल ज्ञान का हुआ, नाश किसका हुआ जीव में? बोलो, अभी क्या बताया? अरे हीन ज्ञान का नाश हुआ जीव में, क्या हुआ? हीन ज्ञान का नाश हुआ। अभी हमने पढ़ा यही वाक्य, अभी पढ़ा, फिर से देखो, देखो देखो उसमें क्या लिखा है, तीसरी लाइन, उस हीन दशा का तो नाश हो गया। ज्ञान की परिणति की जो हीन दशा चल रही थी, यानी अल्पज्ञपना चल रहा था, उसका नाश हुआ और सर्वज्ञत्व प्रकट हुआ। तो ये वही खेत था। कौन सा? हीन ज्ञान था, वही खेत था। हाँ, वो खेत है। अब यहाँ जीव में ही वो एक का व्यय हुआ और एक का उत्पन्न हुआ है। कर्म तो अपने कारण स्वयं में गया है, परंतु यहाँ भावघाती पर मुख्यतः घटित करना है, इसलिए उन्होंने ये बात बताई। कहने के लिए कथन में क्या होगा, वो ज्ञानावरण दर्शन और कक्षय हो गया, पर उसमें मूल क्या बात पकड़नी है, यहाँ जीव के कर्म, क्योंकि कार्य तो उपादान से होता है और वहाँ उसकी उपस्थिति उसको आरोप आता है उस पर, यानी ऐसा नहीं कि वो खलास हुआ इसलिए केवल ज्ञान, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो उस हीन दशा का तो नाश हो गया। खेद के आयतन यानी स्थान घाती कर्म है, केवल परिणाम मात्र नहीं, केवल परिणाम मात्र नहीं, खेद का स्थान केवल परिणाम मात्र नहीं, खेद का कारण केवल परिणमना करना यह नहीं है। क्या कहना चाहते है? परिणमना है ना, कुछ कार्य हो रहा है ना, तो हम कुछ कार्य करते तो थक जाते हैं, तो कहते हैं तो काम करते ना, सुबह से हमने इतने काम किए तो हम थक गए, इसलिए स्वाध्याय में आए और बैठे और सो गए। तो ऐसा नहीं है, इन्हें परिणमन करना ये खेद का कारण नहीं है। परिणमना तो द्रव्य का स्वभाव है, अरे जड़ कर्म भी परिणमित हो गए, यही कह रहे। केवल परिणमन करना यह नहीं है, यानी ये खेद नहीं है, यानी कि खेद का कारण केवल परिणमना करना ये नहीं है। अब नीचे घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, घाती कर्म जो जड़ ज्ञानावरणी आदि है ऐसा पढ़कर अज्ञानी कहे कर्म के कारण होता है, यहाँ तो निमित्त से कथन है। देखो कथन होता है निमित्त से, कार्य तो जीव के अपने उपादान से होगा, बोले उसको अवशुद्ध उपादान को जो कुछ कहो, निमित्त से कथन है। घाती कर्म जड़ है, जड़ क्या घात करे, अपनी पर्याय में घात करता है, तीन दशा करता है, करता नहीं स्वयं कर रहा है, तो घाती कर्म को निमित्त कहते हैं। क्या है, स्वयं हीन ज्ञान रूप परिणमता है तो वो ज्ञानावरण पर आरोप आता है, तो घाती कर्म को निमित्त कहते हैं। और अपने गुण शक्ति की जो पर्याय है उसमें हीन दशा उत्पन्न करके घात करता है वह दुख है। क्या कहते हैं, ये शक्ति गुण में तो शक्ति बहुत पड़ी है और वो कैसी है, हीन दशा उत्पन्न कर रहा है, जितनी शक्ति है उतनी प्रकट नहीं कर रहा है, हीन दशा रूप परिणमित हो रहा है वह दुख है। यानी उसमें अपने ही शक्ति को शक्ति का घात करके हीन दशा रूप परिणम अवस्था में हीन दशा हुआ, शक्ति तो है कायम पर उसने वो हीन रूप से परिणमित होकर पर्याय प्रकट की तो वो दुख है, उसका तो नाश किया। सर्वज्ञ परमात्मा ने हीन दशा कम दशा का तो नाश किया है, समझ में आया, ऐसा कैसा उपदेश। कुछ दया पालने को कहे, व्रत करने को कहे, उपवास करने को कहे, यात्रा करने को कहे, पैसा खर्च करने को कहे तो कुछ समझ में तो आवे, इसमें क्या समझना है। भाई तू क्या चीज है, तेरा स्वरूप प्रभु अकेला ज्ञान और आनंद तेरा स्वरूप है, तो ज्ञान और आनंद शक्ति रूप है, उस पर ज्ञान और आनंद की व्यक्त दशा हो गई तो परिणमन है, उसको उसका परिणमन कहेंगे। तो परिणमन है ये खेद है, परिणमन में ज्ञान और आनंद साथ में है, परिणमन में ज्ञान और आनंद साथ में है। अभी तो केवल ज्ञान की व्याख्या भी बराबर समझे नहीं और नमो अरियंतानम बोले जाए, हमने लाख बार उनका नाम लिया ऐसा कहेंगे भी। खेद के आयतन यानी स्थान घाती कर्म है, केवल परिणाम मात्र नहीं, यानी परिणमना ये खेद का कारण नहीं है। क्या कहते हैं, घाती कर्म खेद के स्थान है, केवल परिणाम मात्र नहीं, परिणाम मात्र का अर्थ है परिणमना, अर्थात परिणमन करना मात्र, यानी सिर्फ परिणमना परिणमन करना ये कोई खेद नहीं हो सकता, ये कोई थकान का कारण नहीं हो सकता। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, अर्थात परमे सावधानी का उत्पादक होने से, परमे सावधानी है और अपने से मूर्छित है ना, असावधानी है, धतुरे की भांति, जैसे कोई नशा चढ़ता है और वो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, अतत में तद्बुद्धि धारण करवा कर, अर्थात जो चैतन्य है उसे जड़ माने और जड़ को चैतन्य माने। आप कहेंगे हम कहाँ मान रहे हैं, तो शरीर ही मैं हूँ तो क्या है, जड़ को मैं मान लिया, चेतन मान लिया, और जड़ को चैतन्य माने और चैतन्य को जड़ माने, यानी मैं चैतन्य हूँ तो उसने शरीर माना और शरीर जड़ है तो मैं शरीर हूँ मान लिया, दोनों की बात वही होती, तत् में अतत, अतत में तद्बुद्धि, अर्थात वस्तु जिस स्वरूप न हो उस स्वरूप होने की मान्यता। जैसे कि जड़ में चेतन बुद्धि अर्थात जड़ में चेतन की मान्यता, दुख में सुख बुद्धि, अलग अलग आप जितना सोचते वो सब सोच लो, अतत में तद बुद्धि, जैसे मोह राग द्वेष या शुभ भाव क्या है, बंध का कारण है, दुख रूप भाव है ना, आकुलता है और वो क्या है, बंध का कारण है, तो उसको क्या मोक्ष का कारण माना, सुख संवर माना है, आश्रय उसको संवर माना, ये अतत में तद बुद्धि। यानी जो धर्म नहीं है उसमें धर्म बुद्धि, वो है तो अधर्म, जो धर्म नहीं वो क्या है, अधर्म। जैसे जो जैन है उसको हम अजैन कहते, तो शुभ भाव धर्म नहीं है, अधर्म है, तो उसी को धर्म माना और करने लायक माना, ये क्या हुए, अतत में तद्बुद्धि, ये मिथ्या थे। जो पुण्य पाप के भाव दुख रूप है, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, उस दुख में सुख बुद्धि वह मिथ्यात्व भाव। तो इंद्रिय ज्ञान में तो सुख लग रहा है कि नहीं, अरे हम तो जान रहे हैं और जानने में बहुत मजा आ रहा है, यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, क्योंकि अति इंद्रिय ज्ञान का पता नहीं है, उसके बारे में विचार नहीं है, और बस इंद्रियों के द्वारा जितना जानना हो रहा है उसको मैं भोग रहा हूँ ऐसा मानकर जान, केवल उस जानने रूप नहीं हो रहा, वो है ना गेय प्रति परिणमन हो रहा है, ज्ञार्थ परिणमन हो रहा है, यानी उसमें राग की बात उत्पन्न हो रही है, उसमें अकेला जानना उसको नहीं हो रहा, क्योंकि अभी सम्यक को तो है ही नहीं, तो वह चारित्र मोह भी पड़ा है ना, तो वह राग भी हो रहा है, इष्ट अनिष्टपना की मान्यता भी उसमें हो रही है अभी। तो यहाँ क्या कह रहे, देखो, उस दुख में सुख बुद्धि वह मिथ्या दोभाव, पेज नंबर 116 नीचे का पैराग्राफ, बड़ा महापाप है मिथ्यात्व के का क्या कहा, महापाप। कोई हिंसा चोरी कुशील करता हो तो वो तो पापी लगता है, तो अभी जो अतिरेकी है, जो कोई इतना बॉम्ब स्फोट करते है, अरे कितने पापी है, कितने दुष्ट है, वो बहुत बड़ा पाप लगता है ना। और जैनी जो मिथ्यात्व कर रहे है वो लगता है हम उससे बड़ा पाप कर रहे, ख्याल में आती ना क्या है? अरे नरक इतना पाप करके अनादिश यही लग रहा है, मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, हा? अरे खाली बंद कितना होता, हाँ वो 70 कोड़ा कोड़ी और ये 40 कोड़ा अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी भी है मिथ्यात्व के साथ, तो उसका बंध 40 कोड़ा कोड़ी का है और मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी है, बड़ा पाप है, महापाप। उस मिथ्यात्व का तो यहाँ नाश हुआ है, समझ में आया, शुभ अशुभ भाव और इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, उस दुख का तो नाश हुआ, इंद्रिय ज्ञान का भी नाश हुआ, यहाँ तो केवल ज्ञान की बात हो रही थी ना, और शुभाशुभ भाव का भी नाश हुआ। जरा इसमें फोन आया है, बंद करना, ये चाणेकर का होगा, लाल लाल में, हाँ बंद कर दो, वो भूल गए, उनको बोला था इसमें करना है, हाँ ये हम नीचे पढ़ रहे थे, नीचे का पहले देखो, उस दुखों का तो नाश हुआ, इंद्रिय ज्ञान का भी नाश हुआ और शुभाशुभ भाव का भी नाश हुआ, परिणमन मात्र सुख रूप है, अब वहाँ कोई परिणमन दुख रूप नहीं है, है धतुरे की भांति अतत में तद्बुद्धि, शुभ भाव में दुख है, वहाँ अज्ञानी ठीक यानी सुख मानता है, पुण्य भाव जो है दयादान व्रत भक्ति आदि भाव, ये शुभ भाव पुण्य है उसमें धर्म मानते हैं, यह दुख मिथ्या बुद्धि है, ऐसे मिथ्यात्व तो भाव का तो भगवान को नाश हुआ है, और इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है उसका नाश हुआ है, अतत में तद बुद्धि धारण कर, बुद्धि का अर्थ होते हैं तद बुद्धि ने मान्यता, मान्यता ये आवाज कहाँ नीचे की है क्या, अतत में तद्बुद्धि धारण करवा कर आत्मा को गेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं, कौन ये महामोह, पहले बात आई ना, ये वाक्य कौन सा चल रहा है कि घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से अतत में तद्बुद्धि धारण करवा कर आत्मा को गेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते। गेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराना, परलक्ष्य से जो परलक्ष्य से वो जानने का कार्य चल रहा है, उसमें राग द्वेष मोह हो रहे हैं। घाती अपने पर्याय का घात करके आत्मा को गेय पदार्थ के प्रति अर्थात जानने के पदार्थ में परिणमन कराते हैं, गेयार्थ में परिणमन कराता है, वह तो दुख रूप है। पहले बात आई थी गेयार्थ परिणमन की बात आई थी। इसलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित हो होकर अल्प ज्ञान प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर एक एक पदार्थ को जानता होने से थकने वाले आत्मा के लिए वह इंद्रिय का ज्ञान करते करते थक जाता है। बहुत पढ़े तो थक जाए, हिसाब की बही लिखते लिखते थक जाए, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है दुख रूप है, क्रम से होता है, उसमें व्यवधान है, बाकी बहुत बात। श्रोता बड़ा चाय का प्याला पीकर वापस लिखने बैठे, धूल में भी नहीं है, चाय का प्याला पीने का भाव दुख रूप है। थोड़ी देर अफीम पिए तो नशा चढ़ जाए, वह दुख है, वह भाव ही राग और दुख है। हम भी क्या करते, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है और चाय पीना दुख रूप है कि सुख रूप है, और वो पीकर वो इंद्रिय ज्ञान भी बढ़ाना चाहते हैं, नहीं समझे। हम परीक्षा होती थी ना, परीक्षा के पहले जागना पड़ता था और ऐसे तो नहीं जागे तो चाय पी पी कर जागे और ये गुरुदेव की भाषा में पाप की पढ़ाई करे। इसलिए
आपको भी स्वाध्याय में सबको चाय देनी पड़ी।
इसलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर एक एक पदार्थ को जानने में रुकता होने से थकान लगती है। ये आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं, यानी वो ज्ञानावरण दर्शनावरण को भी खेद का कारण बताया, वीर्यांतराय को भी, मोहिनी को भी, सबको बताया। उनका यानी घाती कर्मों का अभाव होने से भगवान को केवल ज्ञान में तो भाव घाती कर्म का नाश होने से, उसके कारण से द्रव्य घाती कर्म का तो नाश हो ही होता ही है। केवल ज्ञान जो वस्तु है उसमें जो घात करता है, अल्प ज्ञान करके वहां रुक जाता है, जीव स्वयं उसमें रुकता है, उस अल्प ज्ञान का घात कर दिया, घात करके सर्व ज्ञान उत्पन्न कर दिया, ऐसा है। उनका घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहाँ से प्रकट होगा, यानी अभी उसका खेद का कोई कारण नहीं रहा। भाव घाती कर्म का नाश होने से केवल ज्ञान में खेद कहाँ से प्रकट होता है, यानी नहीं होता। भाषा अलग भाव अलग, आहा। अब दूसरा पॉइंट, भाव घाती कर्म जीव के परिणाम, जैसे ज्ञानावरण ये जो द्रव्य कर्म है, और यहाँ जीव ने अपनी स्वयं की हीन दशा रूप परिणमित हुआ, ये उसका भावघाती कर्म। वहाँ दर्शनावरण में लेना, अंतराय में भी लेना कि वीर्यांतराय जो है, यानी वहाँ तो वीर्य की हीनता हो रही जीव में, वहाँ कर्मों का उदय है, और यहाँ जीव के वो अपने स्वयं के कारण, क्योंकि निमित्त से कुछ नहीं होता, निमित्त कुछ नहीं कराता है, तो कौन कर रहा है, जीव स्वयं। जीव स्वयं वो हीन दशा रूप या विपरीत जानने रूप मानने रूप जो परिणमित हो रहा है, वो उसकी अपनी पर्याय है, वो है भावघाती कर्म।
देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आप घाती कर्मों के नाम जानते हैं, बोलो। ये द्रव्य घाती कर्म के नाम है,
द्रव्य
कर्म जो है उसके निमित्त रूप से उसका उदय जब होता है, तब जीव क्या करता है, मिथ्यात्व करता है। ये मिथ्यात्व करना भी भाव घाती कर्म है। ज्ञान की अल्पता जो है वरना पूरा पूरा ज्ञान खुला नहीं है, तो वो जो अल्पता है वो ज्ञान के स्वयं के कारण से, जीव अपने स्वयं के कारण से हीन ज्ञान उत्पन्न करता है, वो उसके लिए भावघाती कर्म ऐसे सब में लगाना।
यानी हर एक कर्म में यहाँ जो जीव का अपने उपादान से, हमें उसको अशुद्ध उपादान कहे, वैसा वो विकार रूप या अधूरा पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, वो अपने उपादान से हुआ, तब सामने क्या था? द्रव्य कर्म की उपस्थिति थी।
हम तो जानते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो क्या जीव द्रव्यघाती कर्म का नाश कर सकता है? लेकिन कहेंगे कि जीव ने घाती कर्मों का नाश किया, वहाँ दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये निमित्त का कथन है कि उसने द्रव्यघाती कर्म का नाश किया, एक्चुअली क्या क्या अपने में जो भावघाती कर्म थे वो उत्पन्न होने ही नहीं दिए, परिपूर्ण ज्ञान हुआ, परिपूर्ण वीर्य हुआ, इस तरह से
यानी अनंत ज्ञान हुआ, तो हीन ज्ञान दशा का नाश होकर वो अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो अपने जो भावघाती रूप से था ज्ञान, तो वो पूर्ण ज्ञान हो गया, तो सामने निमित्त रूप से जो ज्ञानावरण कर्म था उसका क्षय हो गया, इस तरह से लेना। ये भावघाती पर मुख्यता लेना, क्योंकि उपादान से कार्य होता है और जीव में हो रहा है, कर्म तो जड़ है, कर्म तो परद्रव्य है, उसके कारण होता है, ये निमित्त का कथन है, कथन होता है, पर कथन होता भी उसमें से सही अर्थ ग्रहण करना ये हमारी ड्यूटी है। वो कथन वहाँ बदलना नहीं है, कथन वैसा ही रहेगा, पर उसका पीछे का अंडरस्टैंडिंग हमारा जो है वो सही होना चाहिए। आप आए उसके पहले वो भावघाती की बात हुई थी, ठीक है, अब पूछना जब वहाँ, ऐसे ही रखना नहीं मन में प्रश्न कोई। दूसरा पॉइंट अभी, और तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, कौन से तीन काल रूप तीन भेद? हाँ बोलो ताराबेन। हाँ बोलो। भूत भविष्य वर्तमान, ये तीन काल की बात हो रही है। क्या कहा? दूसरा पॉइंट चल रहा है अभी हमारा, तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की गेयाकार रूप विविधता को प्रकाशित करने का स्थानभूत केवल ज्ञान। कितने समस्त पदार्थ है? तो सारे द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, और उनकी तीनों काल की पर्याय, तो उन पर्यायों सहित वाले वो द्रव्य, कितनी उसमें वेरिएशन विविधता है। तो समस्त पदार्थों की गेयाकार रूप यानी वो सभी गेयाकारों को प्रकाशित करने वाला, ऐसा ये केवल ज्ञान है। तीन काल जानने में एक काल में एक को जाने और दूसरे काल में दूसरे को जाने ऐसा है नहीं। भगवान तो तीन काल को एक समय में जानते हैं, समझ में आया? भूतकाल का जाने, बाद में भविष्य का जाने, बाद में वर्तमान को जाने, ऐसे भेद होवे तो वह खेद है। हाँ हाँ, तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की गेयाकार रूप विविधता को प्रकाशित करने का स्थानभूत केवल ज्ञान। अभी उसको उदाहरण दिया है, चित्रित दीवार की भांति, दीवार में जैसे कोई चित्र चित्रित हो तो एक समय में सब दिखता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीर्थंकरों दीवार पर चित्रित करे, वो आता है ना 3024, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्यकाल की, या ऐसे भी चित्र बनाते हैं ना, जैसे वो सिंह की पर्याय में वो सिंह सामने हरिण दिखाते हैं, मुनिराज ऊपर से आ रहे हैं, उसी में दूसरी जगह वो बनाते हैं, कौन सा महावीर का जीव है ना, उनके केवल ज्ञान हुआ और वो सिद्ध में विराजमान, तो उसकी अनेक पर्याय एक साथ बताते हैं। हाँ, ऐसी स्टोरीज बहुत आते ना कि पूर्व भूमि में कौन थे उसको भी बताते हैं, जैसे वो आदिनाथ को आहार देने वाले श्रेयंस राजा, तो उनके जाति स्मरण में वो बात बताते, उसी चित्र में उनको भी बताते कि पूर्व भूमि में उन्होंने ऐसा दान दिया था, वो याद आता है उनको, जाति स्मरण होता है, एक ही चित्र में भूत और भविष्य की या वर्तमान की बातें बताते हैं।
देखो, यही कह रहे। हाँ, ये प्रवचन सुधा का कवर देखेंगे।
हाँ,
तो तीर्थंकर जो बात बताते हैं वो क्या बोलते हैं, कुंद कुंदा आचार्य ने सुना, और कुंड कुंदा आचार्य से स्वामी जी जानते हैं,
समय सार
स्वामी जी से जानकर आगे जिसका नंबर लगाना है लगा लो।
यानी एक ही चित्र में हमें अनेक बातें समझ सकते हैं। वैसे ये तो दृष्टांत हुआ, ऐसे ज्ञान में वहां तो कोई एक विशिष्ट बात उसके तीन काल की पर्याय बताई है, पर यहाँ तो सभी द्रव्यों के सभी कालों की बात है, एक एक समय की जुदी जुदी। ऐसे ज्ञान में लोकालोक भूत भविष्य और वर्तमान सहित एक समय में जानने में आता है। यहाँ तो तीन ही बातें भूत भविष्य वर्तमान कहेंगे, पर भूत में एक एक समय का भूतकाल है अनादि से, और भविष्य में भी एक एक समय का करके अनंत काल का है। ऐसी बातें हा हा। केवल ज्ञान चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयमेव परिणमित होने से, क्या कहा वो हमने षटकारक में देखा था, वो पर्याय स्वयं करता होकर उस रूप परिणमित होती। तो केवल ज्ञान स्वयं परिणमित हो रहा है, इतने को जानने रूप परिणमन स्वयं उसने की है, स्वयं ही है, स्वयं ही आहा अनंत स्वरूप स्वयमेव परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम है। यानी वही उसका वो परिणमन वही है, वो केवल ज्ञान ही परिणाम है और यह परिणाम ही आनंद है। यानी वो जुदा और आनंद जुदा ऐसा भी नहीं है। आप कुछ कहते हैं?
मेरा एक प्रश्न है कि केवल ज्ञान में तीन काल और तीन लोक की बातें जानी जाती एक समय में, अनंत बातें यानी भूतकाल की वर्तमान की भविष्य की वो जानते हैं, तो उसमें कितने षटकारक लगेंगे? बहन आप भी उत्तर देने का है क्योंकि आपका विषय चल रहा है। फिर से प्रश्न पूछता हूँ, जो केवल ज्ञान है उस केवल ज्ञान में भूतकाल के वर्तमान काल के और भविष्य काल के अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की तीन काल की पर्याय जानी जाती है, तो उसमें षटकार कितने लगेंगे? एक षटकार षटकार कितने लगेंगे? एक लगेंगे, दस लगेंगे, आनंद लगेंगे, एक लगेगा। क्यों? अरे भाई आपको बताने एक ही पर्याय केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान के पर्याय एक है ना। भले ज्ञेय ज्ञेय पर्याय अनंत है, अनंत ज्ञेय पर्यायों को जानता है, केवल ज्ञान अनंत षटकारों को कौन जानेगा? पर उसका अपना षटकारक एक है, एक है ना, छह मिलकर एक
छह है। षटकारक कहा ना?
नहीं नहीं षटकारक पूछा ना, षट कहा। हाँ, यानी उसके अपने छह कारक है, ऐसा षटकारक एक है ऐसा।
यानी किसी के मन में ऐसा हो सकता है कि अरे अनंत को जान रहा है तो अनंत हर एक एक षटकारक होंगे तो अनंत षटकारक नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय एक समय की है और वो पर्याय है तो पर्याय में षटकारक लगेंगे, एक षटकारक लगेंगे।
हाँ, वो ऐसा जानते हैं कि हर एक पर्याय के षटकारक उनके ज्ञान में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर एक पर्याय को जान रहे, उसके अविभाग को जान रहे, सबको जान रहे, परंतु केवल ज्ञान के अपने षटकारक उसके अपने एक ही समय के जो एक है। दूसरे समय में केवल ज्ञान होगा उसके षटकारक उसके अपने हैं, है ना। ये यहाँ पर पेज नंबर 118 पर थे हम, ये परिणाम ही आनंद है, वो नीचे से तीसरी चौथी लाइन, यह आनंद ही परिणाम है। इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेद की उत्पत्ति हो? दूसरे परिणाम कहाँ है? वह तो ज्ञान और आनंद के परिणाम है, उसमें खेद है नहीं। अब तीसरा पॉइंट, और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, प्रतिघात अर्थात विघ्न रुकावट, हनन घात, स्वभाव प्रतिघात अर्थात स्वभाव का घात करने वाले के अभाव के कारण, घात करने वाले का तो अभाव हो गया, निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से। अभी हमने देखा था ना, उसका घात करने वाले कौन थे? तो भावघाती, यानी स्वयं ही हीन दशा रूप परिणमित हो रहा था, अभी उसका घात हो गया, हीन दशा का घात हुआ और सर्वज्ञ दशा ये पूर्ण विकसित दशा प्रकट हुई। और निमित्त रूप से कहेंगे वो ज्ञानावरण का घात हुआ, ख्याल में, वो तो स्वयं अपने से चला गया, कहेंगे जीव ने घात किया, कथन होगा। मानना क्या है? सही जो मान्यता है। तो स्वभाव को घात करने वाले के अभाव के कारण, घात करने वाले का तो अभाव हो गया, उसके कारण क्या हुआ? निरंकुश, यानी अभी उसके मर्यादा में रखने वाला कंट्रोल में कोई नहीं रहा, निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से, उल्लसित होना यानी पर्याय में प्रकट होना, जिसकी शक्ति निरंकुश अर्थात उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, अंकुश बिना केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई। निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक, त्रैकालिक लोकालोक यानी लोकालोक अपने तीनों काल के पर्याय सहित वाला ऐसा लिया, तो लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। केवल ज्ञान कूटस्थ ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहा, कूटस्थ क्यों कहा? वो तो परिणाम है, परंतु अभी तो हर समय केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, उसको ध्रुव भी कहा था। कहां लिखते उसको ध्रुव? सिद्ध दशा को भी, सिद्ध पर्याय है उसको भी ध्रुव कहा लिखा? चल लक्ष्मी को मालूम है, सिद्ध दशा को ध्रुव कहां लिखा? हाँ, ध्रुव अचल अनुपम गति पामेल सर्व सिद्ध ने, पहली गाथा समय सार की। यहाँ क्या कहते देखिए, कूटस्थ है अत्यंत निष्कंप है, उसका अर्थ देखते हैं। छठी लाइन, केवल ज्ञान कूटस्थ है ऐसा कहते हैं। कूटस्थ का अर्थ परिणमन तो है, ऐसा नहीं समझना कि अभी केवल ज्ञान हुआ अभी परिणमन करना बंद हो गया, अभी अनादि से थक गए ना परिणमन करते करते इसलिए अभी बंद हो गया, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। तो परिणमन तो है, लेकिन एक सरीका परिणमन है, यानी अभी कैसा परिणाम होगा? हर समय केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, पहले कम परिणमन बाद में विशेष परिणमन हो तो वह खेद वाला परिणमन आया। यह तो एक समय में कूटस्थ नाम तीन काल तीन लोक का, एक समय में ज्ञान ऐसा, दूसरे समय में ऐसा, तीसरे समय में रहता है। कूटस्थ नाम ऐसा ही ऐसा होता है इस अपेक्षा से कूटस्थ, वो अपेक्षावश कूटस्थ का है तो परिणमन। क्या कहा ये, कूट नाम शिखर होता है ना, शिखर पत्थर का शिखर होता है ना, वो हिलता नहीं है, वैसे यह केवल ज्ञान हिलता नहीं ऐसा कहते हैं। कूटस्थ कूट में रहने वाला, ये कूट शब्द है हम देखते हाँ वो अलग अलग कूटों के नाम आते हैं, वो हमने देखे ना इतने सारे पर्वत है इतने क्या है, तो उसमें वो अलग अलग कूट होते हैं। तो कहते हैं कि कूटस्थ नाम ध्रुव की तरह कूटस्थ नहीं, ध्रुव जिसको कहेंगे नित्य अंश को कूटस्थ कहते हैं, एक परिणमने वाला अंश और एक नित्य अंश, नित्य अंश को कूटस्थ कहते हैं और एक परिणमने वाला अंश होता है। तो कहते ध्रुव की तरह कूटस्थ नहीं है, ये तो है पर्याय, परंतु परिणमन के रूप में एक धारा चली आ रही है इसलिए कूटस्थ है, एक सदृश परिणाम चल रहा है ऐसा कहते हैं। हा हा, अरिहंत का केवल ज्ञान किसे कहें, अभी तो उसकी भी खबर नहीं। क्या कहा, यानी अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान कैसे होता है, वो केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है उसकी भी पता नहीं आता, पता नहीं, और उसे धर्म हो जाए? अरे उसने अनंत काल रखड़ने में व्यतीत किया है अत्यंत निष्कंप, देखा कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है, जो परिणमन है वह अत्यंत निष्कंप है, भले परिणमन किया करे समय 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 समय, परंतु वह एक जाति का परिणमन है, उसमें फेरफार नहीं होता, इसलिए कूटस्थ कहने में आता है। हा हा, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख है, इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहाँ है, व्यतिरेक यानी भेद कहाँ है, केवल ज्ञान ही सुख है ऐसा कहेंगे। अर्थात केवल ज्ञान और आनंद में भिन्नता कहाँ है, जो केवल ज्ञान है वही आनंद है, आनंद है वही केवल ज्ञान है, ज्ञान और आनंद में भिन्नता है नहीं, समय भेद है नहीं। वो आता है ना संज्ञा संख्या संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेद होने पर भी जो ज्ञान है वही आनंद है, अभिन्नता है। किसी प्रयोजन यानी किसी अपेक्षा से भेद होने पर भी वो भिन्न नहीं है। एक समय में ज्ञान और आनंद साथ में है, भले गुण भेद है, ये आपके प्रश्न का उत्तर, दो जुदे जुदे गुण है लेकिन उत्पन्न होने में साथ में है। ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो साथ में अतीन्द्रिय आनंद भी उत्पन्न हुआ, यानी जो अनंत ज्ञान है तो उसके साथ वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद भी होता ही है। इंद्र करोड़ों अप्सराओं के विषय में रहे वह दुख है, उससे तो यह भिन्न जात का अतीन्द्रिय सुख है। देखो क्या कहते हैं उमाबेन, आपने सुखा सुना है ये केवल ज्ञान जो सिद्ध भगवान का ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है उसमें कितना ज्ञान है, तो अनंत ज्ञान है, और उनके केवली को सुख कितना है, अनंत सुख है। तो देवों के इंद्रों के जितने सुख है उससे अनंत गुणा होगा कि असंख्यात गुणा होगा, देवों के सुख से कितने गुणा होगा सुख, वो अनंत गुणा होगा। आप क्या कहते हैं, असंख्यात गुना। अच्छा आप कहेंगे बराबर होगा, बोलो क्या है, इंद्रों का सुख, अरे इंद्रों का सुख तो दुख है, ये इंद्रिय सुख है। मैंने आपको मिसलीड करने के लिए असंख्यात आनंद की बात की वो तो सुख ही नहीं है। हाँ अभी बोलने लगे
नींद खुल गई और आप मोक्ष तत्व के बारे में भूल कर रहे हैं।
देखो इसको कहते हैं ना, जो इंद्रिय सुख के जैसा अनंत सुख होगा ऐसा जो मानते हैं उसने सच्चे सुख को सही नहीं माना। मोक्ष का सुख वो सादे इंद्रिय सुख से अनंत गुना कहना, वो उसकी जाति जुदी जात की। इंद्रिय सुख तो दुख है, वो सुख कहने में आता है, स्वर्गों में कुछ सुख नहीं है। लोग भी पुण्य क्यों करते हैं और पाप से क्यों डरते हैं, अरे मुझे नहीं भोगना, ये मुझे भोगना नहीं है, मुझे ये कर्म को नहीं भोगना, इसलिए वो सीधा रहना चाहता है। वही आए थे कल ये बात बताए थे ना, कोई एक आए थे हमको मिलने के लिए, तो कहते अभी तो मैं इसमें आ गया हूँ, वो सब फटाफट फटाफट जैसे पोपट बोलता है वैसे सब, ये जो सुना है शास्त्र में वही बोलता था, पर अभी भी धंधे में ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, ये ऐसा खोटा दिखाता हूँ वैसा करता हूँ, तो वो कहते मुझे ये नहीं करना है, क्यों, और उसने ना द्रव्य गुण पर्याय का विशेष विस्तार नहीं मालूम है, बेसिक कुछ मालूम नहीं, पंचलब्धि पढ़ी, उसमें संक्रमण नाम कुछ उसने पढ़ा, मुझे संक्रमण जानना है, क्यों, क्योंकि ये अभी ऐसा परिणाम करूँ तो कर्म बंधेगी मुझे भुगतना पड़ेगा। पहले पूछा था आप कौन है, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, नहीं शुद्धात्मा एक बार जो कहते मुझे भुगतना पड़ता है, ये दो बातें कैसे कर रहे हो, मालूम ही नहीं कुछ, और मैं चेतन भाई को सुना है, मैंने इसको सुना है, मैं उसको सुना है, मैं गोस्वामी जी को सुना है, ऐसा सब पैसे के मैं सब सुने हैं, अरे सुने मगर बेसिक पता आता पता नहीं है। एक बार जो कहते मैं शुद्धात्मा हूँ क्योंकि शास्त्र में सुना है, और यहाँ कहते मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे संक्रमण बताओ, मैं संक्रमण जान के क्या करोगे, सोच समझ कर कर्म में कुछ नहीं कर सकता, वो तो ज्ञान के गे होते अरे तो और तो मैं कर्मों को भोगता हूँ यही मान्यता मिथ्या तो है। जिससे तुम जुदा हो, कर्म आपको क्या करे, वो तो जड़ जड़ में पड़ा है, उसके निमित्त से जो संयोग होने हैं वो होते हैं, तो तुम संयोग से जुदे हो तो उसमें इष्ट अनिष्ट पना करके क्या कर रहे हो? मुझे मार्ग बताओ, नहीं लौकिक का मार्ग यहाँ नहीं बताया जाता।
मैंने उनसे पूछा ये कर्मों को कैसा पता चलता है कि इसको तकलीफ देने का, इसको नहीं देखने का है? वो मेरे को मालूम नहीं, हमने तो ऐसा पढ़ा कर्म भुगतना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है, पर क्या है, कोई ना कोई गुस्सा पड़ा है ना अंदर, अभी हाँ चलता है सब सारा, यानी पहले के मान। हाँ हाँ, वो बात एक अपेक्षा से है, पर जहाँ हम प्योर अध्यात्म की बात भी वो कर रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हम कहते हैं अभी मनुष्य पर्याय में आया है, पुण्य के उदय से आया है, अभी अगर आप पूरे कर्म करोगे तो भोगने पड़े, ये तो बहुत स्थूल बातें हैं प्राइमरी जीवों के लिए। वो तो निमित्त रूप से आता है कि किसी अन्य के कारण नहीं है तो ये कर्म के कारण है, वो भी वो पर निमित्त हुआ, उसके अंदर भी अपने पर ही, जैसे अभी भावघाती और द्रव्यघाती की बात की थी ना, यानी वो कुछ दूसरे को भोगता हूँ मैं, पर को जानता हूँ ये, यहाँ भी वो तो उसका भी निषेध किया है।
उसको कहा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, मतलब नहीं ये करूँ तो वो भी पाप है, ये करूँ तो भी पाप है, ये करूँ तो भी पाप है, तो मेरे को तो भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर तेरे को भुगतना नहीं पड़ता तो तू पाप जरूर करता कि नहीं? हाँ, फिर क्या बोलते?
यानी जीव जो पाप से डर कर पुण्य करना चाहते हैं, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है कर्म के, ये तो बंद को, यानी किसी बंद को अच्छा माना, किसी बंद को बुरा माना उसने, यानी ये सारी मिथ्या भ्रमणा रख कर फिर मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ कहने से कुछ नहीं होगा, यानी वो बात उसके अंदर तक जाएगी भी नहीं, क्योंकि जिसको फंडामेंटल कहते हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय की जो भिन्नता है, स्पष्टता जिसको कहेंगे, वो है नहीं है। तो कितना भी आगे के शास्त्र पढ़े, सही भी, अरे तीर्थंकर के मुख से भी क्यों ना सुने, वो तो उसको उसने सही ग्रहण ही नहीं किया, केवल शब्दों को जान लिया है, पर उसका भाव उसको कभी पकड़ में नहीं आ
जाएगा।
अरे कुछ भी पढ़े, 11 अंग पढ़े तो भी नहीं होगा ना, अपेक्षा उसका क्या करे?
अच्छा,
देखो क्या कहते हैं, हो गया, अभी ये पैराग्राफ पूरा करते, यहाँ लिखा था ना, इंद्र करोड़ों अप्सराओं के विषय में रहे वह दुख है, उससे यह भिन्न जात का अति इंद्रिय सुख, इसलिए मैंने पूछा था कि देवों के सुख से वो अनंत गुणा है क्या असंख्यात गुणा है? अरे उसके कोई कंपैरिजन ही नहीं उसके, उसको अनंत गुणा भी नहीं कह सकते, क्योंकि देवों का सुख वो इंद्रिय सुख कहने में आता है, वो है तो दुख, क्योंकि जितना राग है वह दुख है, और पर चीज को कोई भोग ही नहीं सकता है, भोगना वेदना वो अनुभवना ये अपनी पर्याय को वेदता है, और अपनी पर्याय को उस चीज के प्रति मिठास लगे, राग रहा है, आसक्ति रही है, उसको वो भोग रहा है, राग का भोग करता है, पर चीज का कोई नहीं, और राग दुख रूप है, यानी दुख भोग रहा है, और मानता है मैं सुख का भोग कर रहा हूँ, देखो मैं इतने फ्लैट में अच्छा रहता हूँ, मुझे सब खाना पीना अच्छा मिलता है, जब चाहे जो चीज होती है, मैं इतने का भोग करता हूँ, वो अपने राग का भोग कर रहा है, और राग ये दुख रूप है, तो वो दुख का भोग कर रहा है, और मानता है मैं सुखी हूँ, है ना? अतीन्द्रिय आनंद रूप ही ज्ञान है, आनंद रूप ही परिणमन है, तो उसमें व्यतिरेक यानी जुदाई कहाँ है? यानी ज्ञान है वो आनंद रूप ही परिणमन हो रहा है, तो आनंद जुदा ज्ञान जुदा ऐसी कोई जुदाई भी उसमें है? केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहाँ है? व्यतिरेक यानी भिन्नता भेद, यही रुकेंगे अभी हम। चावाणी के ज्ञान ते सूजे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद भाई,
नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो विद्यानं 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 न